Market Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatki with my co-anchor Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. त्योहारों का मौसम चल रहा है और घरेलू शेयर बाजार आज बंद हैं. त्योहारों की शुभकामना आपको. हम हमेशा की तरह हाजिर हैं देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी और विदेशी शेयर बाजार की ताजा खबरों को लेकर. हमारे साथ चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद मनोज जी.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी.
थैंक यू मनोज. India's renewable energy capacity surges fivefold from 35 gigawatts to over 197 gigawatts in 11 years. Country's renewable growth story remains one of the fastest in world, says the government. Major Asian stock markets end mixed, and in Indian bullion market, gold and silver prices slip.
देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में पिछले 11 वर्षों में 5 गुना वृद्धि हुई. पहले के 35 गीगावाट की तुलना में अब 197 गीगावाट का हो रहा है उत्पादन. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी सरकार ने कहा, दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रहा है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन. एशिया के शेयर बाजार आज मिले जुले रुख के साथ बंद हुए और भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की चमक फीकी पड़ी.
And before we take our top story, here is a very important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
श्रोताओं, त्योहारों के अवसर पर ये समाचार देते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. वर्ष 2014 में 35 गीगावाट बिजली उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हो रही थी, जो अब बढ़कर 197 गीगावाट तक पहुंच गई है. ये बड़े जल विद्युत संयंत्र से उत्पादित बिजली के अतिरिक्त है. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. मंत्रालय ने कहा है कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि दर दुनिया में सबसे तेज दरों में है. इसके साथ ही क्षमता निर्माण और विभिन्न ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों के बीच समेकन पर काम भी चल रहा है. वर्तमान वर्ष में केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों ने 5.6 गीगावाट जबकि राज्य एजेंसियों ने 3.5 गीगावाट बिजली खरीद के लिए निविदा भी स्पीच आमंत्रित की है. इसके अलावा वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता इस वर्ष नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 6 गीगावाट की वृद्धि कर सकते हैं. एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हम माने दुनिया में जब जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि हम अपनी कार्बन खपत को कम करें, वैसे में हमारा ऊर्जा उत्पादन एक उल्लेखनीय पड़ाव की ओर बढ़ता नजर आ रहा.
जी बिल्कुल. देखिए, केवल लगभग एक दशक के दौरान 35 गीगावाट से 197 गीगावाट पर पहुंचना अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि ना केवल एक पॉलिसी कंटिन्यूएशन है इस मसले पर, क्योंकि 10 साल थोड़ा सा लंबा समय हो जाता है खासतौर पे किसी नए सेक्टर के लिए. और जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो अगर उसमें सस्टेन्ड ग्रोथ अगर देखने को मिल रही है तो इसका मतलब पॉलिसीज बिल्कुल एक दिशा में चल रही है, नंबर एक. और नंबर दो, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन जिसे कहा जाए, कि केवल सरकार ही इसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रही है, इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये ना केवल मुनाफे का सौदा है अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें, बल्कि लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट्स उनको मिलने वाले हैं इस इन्वेस्टमेंट के वो भी बेहतर हैं। और इसमें चेरी ऑन द केक अगर कहा जाए तो वो ये है कि लार्जर पिक्चर की तरफ अगर हम देखना चाहें तो क्लाइमेट चेंज की जो लड़ाई है जिसमें भारत का योगदान है, उसमें एसडीजी गोल्स के तहत भारत ने जो कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट को पूरा करने की तरफ, यानी कि हम जो फॉसिल फ्यूल्स का जो इस्तेमाल है अपनी एनर्जी की ज़रूरतें हैं उनको मीट करने के लिए, उसको हमें जिस तरह से कम करना है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से हम एक विकासशील इकोनॉमी है तो हमारी ज़रूरतें भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बेहतरीन है। और मेरा मानना है कि केवल इतने से काम नहीं चलेगा, इसे और गति पकड़नी पड़ेगी।
Vishal, you know, we're talking about the country has witnessed a remarkable growth in renewable energy capacity. Which are the government policies and initiatives that you think have contributed significantly to this growth that we're seeing?
The first and foremost is the government's resolve to go ahead and come out and, tell the world that India is willing to cut down on its fossil fuel consumption and increase its energy production from the renewable resources. That was the first one. You have to boldly come out and tell the world that this is what we are going to do. Then it has to be followed by a set of policy guidelines encouraging investment, one. Two, making it easier for the investors to go ahead and put their money where their ideas are, and then giving a smooth way out for the execution of those projects as well. That is why I said 10 years is a long period for a sector which is new, and new and renewable energy is not a very old sector. Yes, there have been a lot of work going on, but a renewed focus has not been there. Now there is a renewed focus. We see, large solar power plants being set up in various parts of the country. There are areas, there are places which were never thought of that they can be, utilized properly to generate renewable energy from either solar power or from, wind power as well, hydro as well. So all these are resources which need to be put in place. And that again, the continuation of the policy is one part, and the participation of the private players is the other part.
No, you mentioned the large, solar plants and all, but it's not just that. There, we have, policies in place. We have initiatives in place where the government is now providing money, to common man to put up solar panels on their rooftops. And so it's not just limited to the big investors, to the big players. It's also the common man who's being involved in these initiatives.
Indeed, it is. The entire loop has been closed properly. And let's not forget that India is one of the founder members of the ISA,
yes,
the International Solar Alliance. Right. The first ISA meeting, apparently, if I'm not wrong, was held in India's national capital only. And we have regularly pointed out that the benefits should be reaped by the common citizen of the country. How would we reap the benefit? That is where the rooftop solar project comes into picture, wherein any citizen of the country can go ahead and avail of the subsidies and put a rooftop solar project on their house, and then not only consume that and but also avail benefits by feeding the excess power to the national grid as well.
ये अब कह लें कि हम आपसे अपेक्षा करेंगे या कह लेंगे मांग करेंगे विशाल जी कि आप हमारे जो हिंदी के श्रोता हैं और आम श्रोता हैं उन्हें बताएं कि किस तरह वो इसका लाभ उठा सकते हैं कि आम आदमी अपने छतों पर या कह लें कि अपने खेत में या अपनी खाली जमीन पर इस तरह के यानी बिजली उत्पादन से संबंधित संयंत्र छोटे या बड़े लगा सकता है।
देखिए, बहुत ही सरल प्रक्रिया सरकार ने कर दी है। एक पोर्टल है सोलर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए। आपको उस पोर्टल पे जाना है, उस पोर्टल पे लॉगिन करना है, उसमें जो जो आपसे जानकारी मांगी जाती है वो जानकारी आपको भरनी है। अगर आपका घर शहर में है तो भी, आपका घर गांव में है तो भी, आपके घर का क्षेत्रफल जितना है उस क्षेत्रफल के हिसाब से आपके घर की छत पे कितना बड़ा सोलर प्रोजेक्ट लग सकता है, फिर उसके बाद उसमें वेंडर्स की भी लिस्ट दी होगी, आप स्वयं चूज करें, सरकार आपके लिए चूज नहीं कर रही है, आप चाहें तो स्वयं चूज कर सकते हैं कि आपको एक्स से लगवाना है या वाई से लगवाना है, आपका प्रोजेक्ट कितना कितना बड़ा होगा, एक मेगा कितने कितने मेगावाट का होगा या कितनी बिजली आपको वाट चाहिए होगा जो है वो उसके उसके उस पैरामीटर के आधार पर यह तय होगा कि आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी। और ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि इसको लगने में सालों लगेंगे, आप आज अप्लाई करिए 60 से 90 दिन के भीतर आपके घर की छत पर सोलर प्रोजेक्ट लग सकता है अगर आपने सारे नियम माने हैं और सारी जो है कागज जमा कर दिए हैं तो। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि आप ना केवल अपने घर की बिजली जलाइए, आप बिजली के बिल से मुक्ति पाइए, बल्कि अगर आपकी जरूरत से ज्यादा बिजली अगर उसमें पैदा हो रही है तो वो
मुनाफा भी
नेशनल ग्रिड में आप दे सकते हैं और जो सरकारी रेट तय होंगे उस रेट के हिसाब से आपके बिल में पॉजिटिव पैसे जुड़ते चले जाएंगे।
यानी मुनाफे का समय है त्योहार में, यहाँ हम एक विराम लेना चाहेंगे और फिर से लौटेंगे लाभ की ओर, बने रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक टू मार्केट मंत्रा, लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टोरी। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज सेड दैट द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक और उड़ान हैज फैसिलिटेटेड ओवर 1,56,00,000 पैसेंजर्स थ्रू 3,23,000 फ्लाइट्स इन 9 years। The Udaan scheme was launched on 21st October 2016 under the National Civil Aviation Policy. Under the scheme, 649 routes have been operationalized, connecting 93 unserved and underserved airports, including 15 heliports and 2 water aerodromes. The government has distributed more than 4,300 crore rupees as viability gap funding to support airline operators and regional infrastructure. Besides, 4,638 crore rupees were also invested in airport development under the scheme. Vishal, the Udaan scheme has completed 9 years, almost a decade. And I'm sure everybody knows that the Prime Minister had said that, you know, he has this dream that people wearing Hawaii chappal should be able to travel in Hawaii jahaz. So how important has the scheme been in bridging this gap between Bharat and India?
Well, if you want to take a closer look at how this scheme has performed over the period of last few years, then we should take a look at the airport map of right. India and how people travel now. Since elections are underway in the state of Bihar, there are two very interesting examples. You know, it's not just Patna Airport now. People can fly to Darbhanga. Mm-hmm. People can fly to one or two others. Smaller airports situated in the state of Bihar. It's not just about Bihar. Down south, when you go, there are small places which have been connected through small airports, there were airports earlier as well. There were airstrips also. But the point is, what's the point of having an airport if there are no planes flying into those airports, if there is no facility, no infrastructure to support those particular routes, not only for the common people but from the airline's perspective as well? So what the Udaan scheme has done is that the Udaan scheme has not only incentivized the airline
operators,
but that incentive has translated into good returns for the common man.
Right.
Now you can fly from smaller towns and cities to larger towns, and then you don't have to spend 10 hours to travel to a larger city and then take a flight out somewhere. And as far as I understand, it's not going to stop here. There are at least 120 more routes which will be developed further. That shows that this scheme has reaped, has given benefits to the common man. Because otherwise, why would the government go on, investing money in a scheme if it's not benefiting the people for whom it is intended?
श्रोताओं, यहां हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम। विराम के बाद फिर से होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र, बने रहिए हमारे साथ।
Welcome back to Market Mantra. The Bombay Stock Exchange BSE and the National Stock Exchange NSE were closed for trading today on account of Diwali Bali Pratipada. Trading in the equity derivatives, securities, lending and borrowing and currency derivatives segments was also not done today. The closure comes a day after the traditional Mahurt trading session, which took place yesterday and marked the beginning of Samvat 2082. The one-hour special session, considered auspicious for investors, saw a lively start, but the early gains did not last long and benchmark equity indices ended marginally higher. The Sensex rose 63 points to close at 84,426, while the NSE Nifty added 25 points to settle at 25,869. Vishal, we've been seeing a revival, so to speak, of the markets, Indian markets. The last five sessions, the markets have closed in the green. And I was reading somewhere in the month of October alone till date, the market, the Sensex has gone up by more than 4,000 points, in fact, more than 4,100 points, which is around 5% surge. So would you say that it's the beginning of a new bull run in the markets, or is it just a festive flash in the, pan, or rather, like we say, ki bum ki ek ladi, 15 second jali aur phus?
No, I wouldn't describe it like that. I would say, largely, whenever there is a festive season, it is expected, because there'll be a surge in the sales, there'll be surge in the demand as well. And that is what we've seen. If you look at some figures, then, there has been a significant amount of sale in almost 1 month of the festive season. That has been also spurred by two, three important policy decisions. One was, of course, in the budget, wherein the Income Tax Act was tweaked to benefit people, so that they could have more money in their pocket to spend it. Second was, of course, the larger GST reform, which sort of brought down the prices of certain items. And the third most important aspect is the RBI's monetary policy stance as well. So it's a combination of this troika, which is giving positive indicators, which is giving a signal to the market as well. And that is why we see markets performing well. Although when we look at the corporate earnings, they're not as good as we would have expected them to be. And as far as my hope is concerned, I believe in the December quarter, when we go to the corporate earnings part, perhaps we might see the double digiting, earning from most of the sectors and all. But when you say what's the impact, what's the long-term impact? Mm-hmm. See, I would say we are a macro-stable, liquidity-rich, and policy-driven and supported economy. And these three are very important pillars.
Right.
Our macro fundamentals are very strong. There is a lot of liquidity in the market. Our domestic market has enough potential in terms of consuming what we produce and what we can import as well.
Right.
There is no policy paralysis. There is a continuation of policies as well. And all this, again, is supported by the RBI's monetary policy stance. And to top that, the inflation figures are a big relief, both for the policymakers and for the common man as well.
Right.
So largely, when we look at all these indicators and when we do overview, we find that the outlook is very positive.
Mm-hmm.
As far as markets are concerned, I keep on saying that, let's not measure the length and breadth of the markets from how they perform in a week, in a fortnight, or even in a month. Or I would even go to the extent of saying even in a quarter.
Right.
It's a long-term game. We have to be patient. We have to look at various fundamentals. We have to keep on tweaking our baskets. We have to keep on, looking at positive aspects, and of course be on the lookout for cautious signals from the global tailwinds and the global geopolitical situations as well. But largely, as far as India is concerned, I believe post Diwali, after this festive season, we are set for a very, very long haul.
So you're talking about patience, so I would request our listeners to be a little patient, because we are going into a short commercial break.
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में. हम चर्चा कर रहे हैं बाजार पर, पहले घरेलू बाजार, आगे हम बढ़े हैं वैश्विक बाजार और उसमें एशियाई बाजार की ओर. उससे पहले विशाल जी, एक सवाल आपने मतलब कहा कि बाजार में टिके रहिए, धैर्य के साथ टिके रहिए. यदि हम एक वर्ष की समय अवधि को माने तो एक महीने ने अच्छा खासा उछाल दिया निवेशकों को. मुनाफा तो हुआ ही है, जो जिनका नुकसान हुआ था वो 85,000 के आसपास बढ़ता दिख रहा सेंसेक्स. तो यहां से ठीक एक साल की अवधि के बाद कहां जाता आप दिख रहे हैं?
देखिए, प्रेडिक्शंस का गेम तो मनोज जी मार्केट्स में किसी को नहीं करना चाहिए. मेरा मानना है कि ये एक सबसे बड़ी भूल होती है, ना केवल इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि एनालिस्ट के लिए भी. हम मार्केट्स किन फैक्टर्स को कंसिडर कर रही हैं,
जी.
उनको अच्छे से स्टडी करें और क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट्स को आगे जाकर प्रभावित कर सकते हैं लार्जर पिक्चर में और सेक्टर वाइज भी. उनको अगर हम अच्छे से समझें तो हम ये समझ पाएंगे कि मार्केट किस दिशा में जा रही है. जैसा कि आपने कहा एक महीने से बहुत अच्छा कर रही है, तो जब राष्ट्रपति ट्रंप ने जब शपथ ग्रहण की थी तो उसके बाद का जो दो महीना था उसमें तो सबकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि वो लगातार फैसले ऐसे आ रहे थे और ऐसे बदलाव हो रहे थे ग्लोबल इकोनॉमी में और मार्केट्स भी उसी हिसाब से उसको हैंडल कर रही थी. तो मेरा मानना है कि स्टॉक मार्केट्स को एक लिविंग बींग के तौर पर देखा जाए, उसको भी उतना ही दर्द होता है गलत फैसलों पर, उसे भी उतना ही अच्छा लगता है त्योहारों के मौके पर, और हम अच्छे से समझें और तब इन्वेस्ट करें.
यानी अच्छा सोच समझ कर किया हुआ निवेश निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएगा आपको आने वाले दिनों में, ये कामना हम करते हैं. आइए चलें वैश्विक बाजार की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार. पहले गिरावट की खबर. हांगकांग का हैंग सेंग 0.9%, चीन का संघाई कंपोजिट और जापान का निक्केई 225 सूचकांक नकारात्मक रुझान के साथ अपने पूर्व स्तर के आसपास बंद हुए, जबकि हैंग सेंग 0.9% से अधिक घाटे में रहा. लिवाली के जोर से यानी खरीदारी से दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगातार छठे सत्र में ऊपर गया. कारोबार के अंत में 1.5% बढ़त के साथ 3,884 के नए रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा. सिंगापुर के एसटी इंडेक्स में 0.3% की वृद्धि हुई. यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां समाचार तैयार किए जाने तक मिलाजुला रुख था. अंतरदिवसीय कारोबार में फ्रांस का कैक 0.2% के आसपास नीचे चल रहा था. जर्मनी के डेक्स अपने पूर्व स्तर के आसपास ही बना हुआ था. उधर लंदन का फुटसी 100 0.9% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था.
मूविंग ऑन टू द यूएस मार्केट्स, यूएस स्टॉक्स क्लोज्ड मिक्स्ड ऑन ट्यूसडे. अमंग द मेजर इंडिसेस द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज रोज अराउंड 0.5%, लेड बाय अपबीट अर्निंग रिपोर्ट. Conversely, the tech-heavy Nasdaq Composite Index dipped over 0.1% amid weakness in growth and microchip stocks, and the S&P 500 ended flat. The GST Bachat Utsav, announced by Prime Minister Narendra Modi and launched on the 22nd of last month, is benefiting people across all sections of society. Today, our correspondent brings you a report on the GST reforms that will boost the economy of Ladakh.
The recent GST reduction across a wide variety of products and services have impacted Ladakh's rich economy, bringing relief to artisans, farmers and small enterprises. Under the revised tax structure, GST on handloom products including Pashmina wool, Namda rugs from Leh and Kargil have been reduced from 12% to 5%. This move has improved income stability for local herders and artisans, increasing the potential for export growth. It has also helped in lowering the production cost and encouraging the revival of traditional handicraft practices. Meanwhile, the tax rate on hotel rooms priced up to 7,500 rupees has been reduced from 12% to 5%. The reduction have made travel and accommodation more affordable, particularly during the busy tourist season. This step has also supported the growth of ecotourism and local homestay economy. Overall, the new GST reforms are unlocking wide-ranging benefits for Ladakh's economy. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
And now let's move on to commodities. Global crude oil prices surged around 2% today, rising for second straight session. Brent crude was trading over 1.8% up at $62.44 per barrel. And WTI crude was trading around 2% higher at $58.37 per barrel when reports last came in. And Manoj, good news on the front of gold and silver prices. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 5.3% down at 1,21,460 rupees per 10 grams, while silver was trading 3.4% down at 1,45,190 rupees per kilograms a short while ago.
आइए आपको लिए चलें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहां दिसंबर अनुबंध वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 5.5% घटकर 1,21,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी अंतिम रिपोर्ट आने तक लगभग 3.5% नरमी के साथ 1,45,130 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी. विशाल जी, सोने में निवेश का यानी सोने ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है पिछले कुछ समय से, अभी क्या उचित समय है?
देखिए, सोने में निवेश का उचित समय और अनुचित समय हर समय लगेगा आपको
जी.
निर्भर इस बात पे करता है कि आप कब ये फैसला लेना चाहते हैं कि आपको सोने में निवेश करना है. अब एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि अगर आपने आज से 4 दिन पहले सोने में निवेश किया होता तो और आपने रखा होता तो आपको आज लगता कि शायद मैंने गलत समय पर निवेश,
बिल्कुल,
लेकिन अगर आपने आज से एक महीने पहले निवेश किया है तो शायद आपको अच्छा लगता। और आप अगर आज निवेश करेंगे और आपको शायद सोने में रेट बढ़ने की स्पीड अगर उतनी ज्यादा नहीं है तो आपको हो सकता है थोड़ी सी निराशा
जी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे विशाल।
And before we close, a reminder of the headlines. India's renewable energy capacity surges fivefold from 35 gigawatts to over 197 gigawatts in 11 years, says the government. Major Asian stock markets end mixed. And in Indian bullion market, gold and silver prices slip. And that's it in this edition of Market Mantra for now. From the entire team of Market Mantra, Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।